थोड़ा सा आपके साथ टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। माशाल्लाह अच्छे सबके नंबर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने अच्छा टेस्ट किया। मगर थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि जितना मैं एक्सपेक्ट करती थी, क्योंकि जितना आसान टेस्ट था ना, उस लिहाज से मतलब जितने सबके नंबर मैं सोचती थी कि पूरे पूरे आएंगे, उस तरह से नहीं हो सका। मुझे इसकी वजह नहीं पता कि क्या वजह हुई है, कि क्यों आप लोगों को कोई चीज़ क्या समझ में नहीं आई, या आई डोंट नो कुछ कंफ्यूजन थी या क्या हुआ है। तो वो मेरी तो समझ से बाहर है कि क्यों ऐसा होता है। माशाल्लाह सब बहुत अच्छा कर रहे होते, फिर जी के क्या मतलब समझने में टेस्ट के कुछ मुश्किल हो जाती है या उस टाइम पे। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, मगर फॉर सम रीजन उस वक्त कुछ कोई ऐसा चक्कर होता है कि कोई इतना पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता। तो मैं इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने फुल मार्क्स लिए और जिनकी एक मिस्टेक हुई है उनके नाम अनाउंस करूंगी इंशाल्लाह ताला। जिन्होंने फुल मार्क्स लिए हैं माशाल्लाह तबारकल्ला, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनसे। अदीला खान, फरजाना चौधरी, अफसर फातिमा, मरियम अतर, इतने ही लोग हैं मेरे पास इनके फुल मार्क्स आए हैं। अगर कोई और ऐसा है जिसका मैंने नाम नहीं लिया तो वो मुझे बता दें, ठीक है। और जिनके सेकंड हाईएस्ट हैं, एक मिस्टेक जिन्होंने की है, तहसीन सिद्दीकी, अमरीन मंसूर, नौरीन खान, तैयबा आरिफ, सबाहत हाशमी, उमे मलिहा, शाहादी, शहनाशा, शाजिया नासिर, नसरीन आबिद, महरीन फातिमा, जी ये हैं जिनके एक मिस्टेक के साथ आए हैं। बाकी लोगों की एक से ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं। तो एक से ज़्यादा मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं है, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आई थिंक तो मैंने बहुत ही आसान टेस्ट बनाया था। फिर इसके बावजूद इतनी मिस्टेक्स होना अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश किया करें कि नेक्स्ट टाइम सवाल को समझें ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना नहीं होता, बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना, उसको समझना सही से, पेपर को, टेस्ट पेपर को, ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर लोगों के मतलब फुल मार्क्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी इंशाल्लाह किताबुल मुसाफा में हम देखेंगे आज। उम्मीद है जिन लोगों ने पिछली दफ़ा कुछ क्वेश्चन, फिर टाइम ख़त्म हो गया था तो हम नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने अब उनको समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चंस का। लेकिन अगर किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो बता दें, कोई क्वेश्चन में अभी तक समझ नहीं आया। असल में मैं ये देखती हूँ कुछ लोगों को जो क्वेश्चन नहीं समझ आते, तो फिर मैं देखती हूँ कि और लोग कितने हैं जिनके 100% मार्क्स आए। जब मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों के 100% भी मार्क्स आए, या जिन लोगों के एक या दो भी मिस्टेक्स हुई हैं लेकिन उन्होंने वो क्वेश्चन सही किया हुआ, तो फिर मुझे पता चलता है कि इसका मतलब क्वेश्चन में कोई मसला नहीं था, आपके समझने में मसला हुआ है ना। वरना अगर क्वेश्चन में मसला हो तो फिर तो सारों को मसला होना चाहिए, सबको होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। चले इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व हलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना व 'अल्लिमना मा यन्फ़उना व ज़िदना 'इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। जी शुरू करते हैं। ये कुलसुम आप बताएंगी किताबुल मसाका से क्या मुराद है, किस चीज के बारे में ये?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी।
आपने
ये जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं किताबुल मसाका, ये किस चीज के बारे में है, क्या ये इसके अंदर क्या है, क्या टॉपिक है ये?
अच्छा जिस दफा सामने पढ़ाया उसके बारे में आप
जी
पूछ
जी जी
रही हैं। दिया, मैंने तो 985 जो आपने लैब टाइम छोड़ा था मैंने वहां से उसकी तैयारी की थी।
आपको करना है क्योंकि ये तो पिछले हफ्ते का था और ये तो फिर रह जाएगा, इसको साथ साथ करें। जब भी क्लास हो तो उसके बाद जहां तक पढ़ाया गया उसको दोबारा जरूर रिवाइज किया करें, क्योंकि वरना ये भूल जाएगा, जहन से निकल जाएगा। और थोड़ा सा इसमें कुछ ट्रिकी चीजें हैं तो वो अगर आपने मिस कर दी तो फिर नहीं जहन में रहेंगी बाद में। अच्छा ठीक है, यास्मीन नहीं आप बताएं, सबाहत आप बताइए। अच्छा ठीक है, हाँ जी जी जैसे सिकाया हम कहते हैं, सकी कहते हैं, पानी मांगने का भी इसे तस्का मूसा जैसे कुरान में आया है, तो उसी से आप याद रखें कि पानी से मुतल्लिक है। जी आप इसी चीज को मरियम आप जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगी, ये किस टॉपिक के बारे में? जी मरियम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मरियम हैं आप यहाँ? अच्छा ठीक है, जी शहनाशा आप बताएंगे थोड़ा सा और इसी को एक्सप्लेन करें। वालेकुम अस्सलाम।
इसमें ये था कि किसी को सिस्टम पे देना।
अच्छा
ये भी एक बात कही थी सर ने।
अच्छा नहीं, वैसे इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या? ठीक है ठीक है, ओके जी। अब मरियम आप आ गई हैं यहाँ पे, मौजूद है मरियम? जी मरियम हैं आप यहाँ पे? क्योंकि आप आईडी शो हो रहा है लेकिन आप यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही। जी शाजिया नासिर आप इसको और एक्सप्लेन करें। वालेकुम अस्सलाम।
जो पानी पिलाने से पानी के मामला जो है जमीन को जो पानी लगाया जाता है उसको मसाका अरबी में कहा जाता है। और ये जो है जमीन किसी को दी जाती है, अगर खुद नहीं कोई बंदा अपनी जमीन पे काम कर सकता तो उसको मजदूरी पे या एक जो पाकिस्तान में राखी कहा जाता है उससे दिया जाता है कि वो जमीन में फसल को पानी लगाएगा।
ठीक है शाबाश, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताएंगी राफिया बेगम कि क्या जमीन को इसी इस तरह से किराए पे किसी को देना जायज है? क्या ठीक है ये कि किसी को किराए पे ऐसे जमीन दी जाए? जी राफिया बेगम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी
किराए पे जमीन दे सकते हैं, यानी कि किराए पे तो दे सकते हैं अगर ज़राअत के लिए दें और वो खुद भी करें और वो भी हिस्सा लें और फिर जिसने दिया उसको भी हिस्सा दें उसमें से, और अगर ना हो जैसा अगर कभी ना निकले तो फिर ऐसा ही
नहीं सही। अच्छा अब आप सुनिएगा जरा और भी, क्योंकि सही तरह से मैं चाह रही हूँ आप लोग एक्सप्लेन करें, ये थोड़ा सा थोड़ी ऐसी बातें हैं। जी नाज़नीन आप बताएंगी। जी नाज़नीन
वालेकुम
अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
आपने कहा कि क्या जमीन को किराए पे दे, मतलब उसके रेंट के ऊपर दे सकते हैं?
जी 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 ज़राअत के लिए, ज़राअत की बात हम कर रहे हैं। जी जी बताइए।
अच्छा। और उसमें से फिर एक फिक्स अमाउंट जो है उसका रखा जा सकता है या फिर पैसे अगर वो दे तो फिर पैसों पे भी रखा जा सकता है, तो ये अलाउड है?
अच्छा, एक फिक्स्ड अमाउंट की तो समझ में आ गई बात। वो तो ऐसे ही हो गया कि जैसे आपने किसी को एम्प्लॉय रख लिया तो आपने कहा कि भाई ये काम करोगे, लेकिन आपने बोला पैसों पे, वो मतलब आपका क्या है?
मतलब आप जो भी बंदे को दे रहे हैं, आपके खुद का खुद की फार्म है और आप किसी और बंदे को दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं सारा कुछ काम करूंगा इसमें और मैं तुम्हें फिक्स अमाउंट दिया करूंगा एवरी मंथ या जब भी खेती उगेगी, तो फिर वो उसका मतलब ये है कि पैसों पे देना।
तो दोनों
उगाने दिया है खेत
नहीं, तो दोनों बातों का तो एक ही मतलब हो गया। पहली बात आपने कहा फिक्स अमाउंट, और दूसरी बात में
भी वो एक बात थी और दूसरी बात ये हो गई कि अनाज में भी फिक्स अमाउंट, अनाज का फिक्स हिस्सा दिया जा सकता है कि इतना अनाज उगेगा तो इसमें से इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना मेरा, ये भी दूसरी चीज की जा सकती है।
अच्छा, इतना तुम्हारा और इतना मेरा, यानी ये आप तय कर लेते हैं। तो फिर मना क्या है इसके अंदर? जब कहा गया कि ये मना है पहले आया, तो वो फिर मना क्या चीज है कि ये मना किया गया?
मना क्या चीज है?
हाँ, किस चीज से मना किया इसने फिर? अच्छा, आपको क्यों बताएंगी कि जो है ना किस चीज से मना किया गया, क्योंकि वो पिछले वाले में आ चुका है चैप्टर में।
अस्सलाम
वालेकुम रहमतुल्लाह जी।
यानी जमीन को ज़राअत पे तो देना जाएगा, मना ये है कि कुछ हिस्सा अपने लिए और कुछ किसी को दिया जाए, इससे मना किया गया।
अच्छा, कुछ चीज़ा कुछ हिस्सा आपने लिया और कुछ किसी और को दिया, तो फिर करेंगे कैसे? फिर कैसा करना ठीक है फिर? यानी आपका मतलब है पैदावार पे देना ठीक है और कुछ हिस्सा करके और कुछ हिस्सा जमीन का देना सही नहीं है, इस तरह से? नहीं मरियम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आपने यहाँ पे लिखा आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी जी सॉरी, बताइए।
यही है ना कि अगर कुछ हिस्सा इसलिए इसमें है कि देखिए अगर कोई अपनी जमीन किसी को देता है, जो मुझे समझ आई है वो ये है कि अगर कोई अपनी जमीन किसी को देता है ज़राब पे और से कहता है कुछ हिस्सा उसका कुछ मेरा, जो है वो ये है कि देखिए जिसकी जमीन है उसको तुम्हें पता कि उसकी जमीन में कहाँ पर ज्यादा पैदावार है या कहाँ पर कोई नुकसान है या कमी है किसी जमीन में, तो अगर वो ये कहते कि जो अच्छी जमीन है उसकी वो पैदावार वो लेगा और जो उस पर काम कर रहा है उसको वो ऐसी जगह की पैदावार दे जिसमें की ज्यादा नहीं है, तो यही इससे मना किया।
शाबाश, गुड जी, बिल्कुल सही समझा आपने। अब आप लोगों को समझ आई कि किससे मना किया गया। देखें, जमीन देना जैसे पहले आया कि नहीं जमीन देना मना है, तो वो कुल्ली तौर पे मना नहीं, मगर इस किस्म का मना है जैसे इन्होंने अभी बताया है कि जिसमें ये है कि जमीन का एक हिस्सा ये फिक्स कर दिया जाए, भी ये वाला टुकड़ा फॉर एग्जांपल जो फार ईस्ट का है वो तुम्हारा है, जो ये वेस्ट की तरफ वाला मेरा है, ये पैच मेरा है और ये पैच तुम्हारा है, इस पैच का जो आएगा पैदावार वो मेरी होगी और इस पैच की तुम्हारी होगी। हो सकता है वहां पे ज्यादा पानी ना लगता हो सकता है वहां की जमीन ज्यादा जरखेज ना हो सकता है वहां पे कोई और मसले मसाइल हो, और वो बेचारा जो काम करने वाला है उसको तो नहीं मालूम, तो वो उस जमीन को लेकर बैठ जाए, उसको तो नुकसान हो जाए और इसको बैठे बैठाए फायदा हो जाए, तो इस तरह से करना मना है। हाँ, जिस तरह से करना जायज है वो ये सही है कि अगर ये कह दिया जाए कि इस जमीन का मसलन पूरी जमीन है उसकी पैदावार 100 में से 50% तुम्हारी और 50% मेरी, ये सही है, ठीक है, पैदावार का हिस्सा इस तरह से करना ये सही है। या फिर ये जैसे इन्होंने अभी बयान किया था कि फिक्स कर लेना भी सही है कि ठीक है इतनी अमाउंट तुम्हें दी जाएगी, तो इस तरह के हिस्से करने ये जायज है, मगर ऐसे हिस्सा कर लेना आपको पता होना चाहिए कौन सा मना है और कौन सा इसके अंदर से जायज है। इस तरह से पैच में के पैचेस को फिक्स कर लेना ये दुरुस्त नहीं है, और उसकी वजह यही बताई गई, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते कि किसी को भी नुकसान हो और ब्लाइंडली कोई बेचारा नुकसान में पड़ जाए जबकि उसको पता ही नहीं है, तो इसमें ये चांस है कि कोई एक नुकसान में पड़ जाए और उस बेचारे को पता ना हो, उसकी मेहनत उसने भी की है तो उसको एक बैठे बिठाए कम मिले और वो दूसरे को ज्यादा मिल रहा है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। उससे पहले जो भी रेशो रखनी है, जितनी भी कोई फिक्स नहीं की इस्लाम ने, जिस पे दोनों मान जाए, 30-70 की हो सकती है, 50-50 की हो सकती है, जितनी भी रेशो, तो दूसरे को भी पता होगा कि मुझे इतना मिलेगा, ठीक है। जीसस फ्रॉम व्हाट हदीस, ये पीछे से जो हम पढ़ते आ रहे हैं और उसके अंदर इसको इसका स्टार्ट भी मिला लें, और पीछे से भी जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें उससे, और यहाँ में सारा ये कलेक्टिव को मैं आपको एक समरी बता रही हूँ, ठीक है? अच्छा जी, बहुत कम लोग आए हैं आज ना, किससे फिर पूछा करूँ अगर आप लोग आएंगे ही नहीं तो। जी शाहदी, आप बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत उमर ने उम्महातुल मोमिनीन को क्या चॉइसेस दी थी?
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम। जी
हजरत उमर ने ये चॉइस दी थी कि चाहे आप लोग जो सौ सदके देते हैं वो लेते हैं या जो अराजी है वो लेना पसंद करती है, तो हजरत आयशा ने जमीन लेना पसंद किया था।
ठीक है, और जो पहली आपने बात की वो क्या था?
तकरीबन अज़वाज मुतहररात को वो सौ वसक देती थी।
सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो पैदावार लेना चाहती हैं या जमीन लेके और खुद ही फिर उसके ऊपर, यानी जिसको हम कहते हैं बीजना, खुद ही बीजना चाहते हैं, खुद ही किसी को किराए पे देना चाहते हैं, खुद ही सारे काम का टेक केयर करना चाहते हैं, खुद ये चाहते हैं, या फिर ये ऐसे ही है? जज़ाकअल्लाह खैरन शादी, ये ऐसे ही है जैसे कि आप ये किसी को कह दें, मसलन क्योंकि हम ज़राअत वगैरह में है नहीं ना, तो हमें इतना इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप ये कह दें कि फलां जगह का किराया आता है, आप किराया लेना चाहते हैं, या हम आपको फलां जगह पे जमीन ही दे दें कि आप खुद ही उस पे बिल्ड करें और खुद ही उसको जिस पे को मर्जी किराए पे जितने मर्जी का दें वो सारा आप हैंडल करना चाहते हैं, तो उसमें जाहिर ही बात है ज्यादा वो है हैसल है, और जो एक पैदावार आ रही है वो उसके अंदर एक थोड़ी आसानी है, इतना ज्यादा कुछ नहीं देखना पड़ता। तो ये फिर ये सारा मामला किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में क्या ऐसा था, क्या ऐसा हुआ था जिससे ये जमीन का पैदावार इस तरह से महातल मोमिनीन को मिलने लगी थी? इशरत आप बताएंगी।
अस्सलाम वालेकुम जी, उस वक्त जब खैबर की जमीन की तकसीम हुई उस वक्त बात है
जी? जी ठीक है, खैबर की जमीन खैबर जब फतह हुआ था बहुत
उन्होंने कहा कि वो हमें नहीं निकाले, हम इस पर मजदूरी करेंगे और आपको अनाज देंगे, इसका जमीन की पैदावार हम आधा उनका होगा आधा मुसलमानों का होगा।
और ये बताएं कि ये जो उम्महातुल मोमिनीन को दिया जाता था ये क्या मंथली खर्चा था उनका?
सालाना खर्चा था सर।
और ये किस किस चीज के लिए था, क्या खाने पीने का था या फिर हर चीज के लिए था? नहीं, खाने पीने का नहीं था, सब चीजों का इसी से खर्चा निकालना, ठीक है, सब चीजों का इसी से खर्चा निकालना। जज़ाकअल्लाह खैरन इशरत जी। इरम आप बताएंगी कि हर चीज का खर्चा कैसे इससे निकाला जाता था? ये तो अनाज है तो।
जी
वालेकुम जी, मैंने कहा ये तो ज़रात की से एक पैदावार आ रही है और ये कहा गया कि भाई 100 वसक दिए जाते थे सालाना और इससे हर चीज का खर्चा निकालना है, कैसे खर्चा निकालते थे वो इससे हर चीज का? यानी ये तो खाने पीने के काम आ सकता है, बाकी भी तो जरूरियात हैं, कपड़ा है और चीजों की जरूरियात है, वो फिर कैसे पूरी हो रही है? मतलब कैसे इसको यूज करते थे इसमें? नहीं नहीं वो सही है, वो सही है, लेकिन इस अनाज को कैसे उस चीज के लिए यूज करते थे? मसलन उनको कपड़ा चाहिए, उनको ये चाहिए, तो अनाज को कैसे यूज करेंगे? नहीं, अच्छा अब आप सुनिएगा शकीला आंटी, आप बताएंगी कि कैसे कैसे वो इसको अनाज उनको दिया जा रहा है घर में और उन्होंने और भी चीजें उस लेनी है, तो कैसे अनाज को यूज करेंगे? ये शकीला आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही।
मेरी आवाज नहीं आ रही है
जी, अब आ गई। हाँ जी बताइए।
मैं पूरा पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैं दूसरी चीजों की तैयारी में थी, लेकिन मैं अपने उससे बताती हूँ कि जब उसका अगले बदले का नहीं, जैसे बार्टर सिस्टम जैसे कहा जाता है, किसी को ये चीज दे करके उनसे वो चीज ले लेंगे।
शाबाश। अच्छा आपने पढ़ा नहीं लेकिन आपने जवाब सही दिया, माशाल्लाह। अच्छा इसको कहते हैं बार्टर ट्रेडिंग। ये मैं आपकी तवज्जो इस तरफ बुलाना चाहती हूँ कि आज तो हम पैसे यूज करते हैं ना, उस जमाने में बार्टर ट्रेडिंग होती थी। यानी एक चीज किसी के पास है तो उसने मसलन जूता लेना है तो इतना अनाज दे दिया, और उससे कॉबलर से जो मोची है उससे जो भी जूते बनाने वाला है तो उससे जूता ले लिया। एक कपड़ा लेना है तो इवन ये हमारी नानियों दादियों के जमाने में भी इवन ऐसा हुआ करता था कि कपास है किसी के पास, गंदम है किसी के पास, किसी के पास कोई भी अनाज है तो वो उतना अनाज दे के उससे वो चीज ले लेते थे। उस तरह से दूसरे बंदे को अनाज मिल जाता था और हमारे आपको आपकी जरूरत की चीज मिल जाती, तो इस तरह की ट्रेडिंग हुआ करती थी। और ये बड़ी बेनिफिशियल है इसलिए कि ये जब से पेपर मनी आया है तो पेपर मनी की वैल्यू आप देखें, आज आप बैंक में रखते हैं अपने पास पैसे तो कल को डीवैल्यू हो जाता है। आज जो आपने 1 लाख रखा, कल 10 साल बाद उसे 1 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, उससे कोई चीज नहीं मिलेगी। तो बार्टर ट्रेडिंग में किसी का भी नुकसान नहीं होता, दोनों का फायदा ही फायदा है। उसमें इस तरह डीवैल्यू होने का चांस नहीं होता। मसलन ने किसी को कर्ज भी दिया तो उसके ऊपर रख के दिया कि आज अनाज मसलन है फॉर एग्जांपल 10 किलो आटा इतने का आता है तो 10 साल बाद भी 10 किलो आटा जितने का आएगा उतने पैसे तुमने मुझे वापस देने। आज जितने 10 किलो आटा आता है उतने मैंने तुम्हें दिए, जब 10 साल बाद भी मैं तुम्हें इसी तरह दूंगा। जी बिल्कुल, पहले पेपर मनी तो था ही नहीं ना। ये पेपर मनी तो ये जो बड़ी मछलियां हैं उन्होंने अपने आप को अपने पेट भरने के लिए ये पेपर मनी इंट्रोड्यूस किए, और उसके बाद कुछ लोग बैठे बिठाए उनको नुकसान होता जा रहा है और कुछ लोग बैठे बिठाए मिलियनेर बन रहे हैं। अब आप आज पैसे रख दें, पेपर मनी रख दें, कल को वो कुछ आप देखें हमारे मुल्कों में जिस तरह डी वैल्यू होता है रुपीज, क्या वैल्यू उसकी रह जाती है। कल तक 1 रुपए में क्या कुछ आ जाता था, आज 1 रुपया फकीर भी नहीं लेता। तो ये क्या है, तो बार्टर ट्रेडिंग जो है ना इसकी तरफ लोगों को आज भी लोग कहते हैं कि लाना चाहिए और ये पेपर मनी को खत्म करना चाहिए, वजह यही है। ठीक है, सना से यू कांट डू दैट लाइक फ्रेश डेट से ड्राई डेट डोंट एक्सचेंज आइडेंटिटी। और नहीं 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 नहीं, वो आप बिल्कुल, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। वो इस चीज के अंदर बात है कि जब आप ऐसी तिजारत कर रहे हो जिसमें किसी को घाटे का अंदेशा हो कि आप वो चीज नहीं कर सकते। बार्टर ट्रेडिंग तो होती थी कि एक चीज के बदले में दूसरी चीज ली जाए, कोई जरूरियात है उनके बदले में दूसरी ली जाए, वो डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा जी, और आप लोगों को ये तो सारा पता होगा ना, एक वसक कितना होता है और फिर कितना उसके अंदर कितने किलो आ जाता है एक सहा में, ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तो हमने पहले भी किया था। ठीक है, अच्छा जी, अगर कोई इंसान अगर कहीं कोई दरख्त लगाता है तो इसकी क्या फजीलत है। नाइद आंटी आप बताएंगे जी।
जो खेती बाड़ी करिए चरिन परिन और इंसान भी खाए तो उनके लिए सदका चाहिए।
जी सदका है उनके लिए, जज़ाकल्लाहु खैरन। आप ये देखें कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस चीज को वो किया जाता है, आपको पता है वो एक ऐसे शेप का वो आदमी सा खड़े कर देते हैं खेती में कि वो परिंदे ना आए खाने के लिए। वो देखा है आपने उसको क्या कहते हैं, क्रो समथिंग, वो ऐसे पुतला सा नहीं खड़ा कर देते कि वो कोई परिंदा ना आए भाग जाए, ताकि स्केयर क्रो कहते हैं उसको। अच्छा आप लोगों ने देखा जरूर होगा कहीं ना कहीं। हाँ जी, तो वो इसलिए ताकि कोई परिंदा ना आके खाए, हालांकि आपको पता है अगर कोई परिंदा खा लेगा सुभान अल्लाह तो वो भी सदका है, वो ऐसे जाया नहीं जा रहा। इसी तरह मुझे अपना याद है कि हमारे यहाँ भी जैसे क्योंकि गंदम वगैरह हम करते थे तो हमारे सेहन वगैरह में भी पूरे गंदम सुखाने के लिए बिछाई जाती थी, तो उसके अंदर से फिर चिड़ियाँ भी खा लेती थीं, कभी कुछ भी खा लेता था, तो वह खुशी होती थी कि चलो कोई जानवर खा रहा है तो हमें इसका बैठे बिठाए अजर मिलता जा रहा है। वो कितना खा लेंगे, हालांकि कोई बहुत ज्यादा तो नहीं खा लेते, पूरी कोई फसल तो नहीं खा सकते, एक एक दाना ही उठा के लेके जाएंगे। तो इस तरह से इनों में भी डाली जाती है उस तरह से सुखाने के लिए बिछाई जाती है, तो इसके अंदर से कोई भी आपकी यानी इजाजत के बगैर कोई ले रहा है। इसी तरह आप देखेंगे हमारे मुल्कों में ऐसे होता है कि किसी का दरख्त लगा हुआ है, कोई तोड़ के ले गया फल, तो वो भी सदका है, ठीक है, वो भी सदका है। इंसान ले जाए, कोई जानवर खा ले, कोई परिंदा खा ले, सदका है वो। इसको अगर अपने लिए सदका समझ के कबूल कर लेते हैं तो अजर है, और अगर उसके ऊपर लड़ाई मार कुटाई होती है तो फिर सही नहीं है। इंसान को पता होना चाहिए ये भी मेरी सदके की एक सूरत है। अच्छा जी, अब और कौन मुझे बताएगा? ये मेरा स्क्रीन बंद हो गई। अच्छा जी, और कौन है यहाँ पे? यास्मीन आंटी, आपकी हिम्मत है बताने की? मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त कैसा फील कर रही, अगर आप ठीक फील कर रही हूँ तो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी दे। अच्छा जी, ये देखें कि यहाँ पे हमें 1002 जो हदीस है उसमें बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैइस्समार हत्ता तुज़हिया, बै समर की बै को, फलों की बै को जब तक जहूर ना हो जाए उस वक़्त तक उसको बेचने से मना किया गया। तो क्या मतलब है इसका? शाबाश, वेरी गुड। यानी उस वक्त मना किया गया कि ऐसा कच्चा ही बेच दिया अगर, तो कल को कोई पता नहीं है वो पके भी के नहीं पके, वो मतलब बराबर हो भी कि नहीं हो, तो ये ना हो कि किसी को नुकसान हो जाए। अच्छा जी, जी राहत, आप बताएंगे कि जो कर्ज से कुछ माफ कर देता है तो उसका क्या अजर है? जी, उसकी
खुशखबरी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत वाले दिन उस पर बहुत नरमी और शफकत की जाएगी, क्योंकि उसने दुनिया में किसी को कर्ज दिया था तो उसने नरमी बरत रही थी। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जैसे कि जिसने कर्ज लिया हो और जिसने देना हो, तो अगर उसके पास नहीं है तो लेने वाले को बहुत नरमी और इतिहास से और शफकत से तो मामला करना चाहिए।
सही, और अगर वो मसला में उसके कर्ज तो लेता है मगर कर्जदार को मोहलत देता जाता है, मोहलत देता जाता है, तो उसपे क्या अजर है? जितना कि उसने कर्जा दिया है, मतलब $1,000 कर्जा दे दिया अगर किसी को, $1,000 हर रोज सदका करने का अजर मिल रहा है। सुभान अल्लाह, यानी कितनी बड़ी एक अजर सवाब वाली बात है। और आपने देखा है कि हमारे यहाँ अल्लाह अकबर हाल ये होता है कि कत्ल हो जाते हैं ये कर्जों के पीछे। लोग कर्जे मांग रहे हैं, दूसरा नहीं दे रहा, दूसरा यानी नहीं मिल रहा उसको, या वो उसके दरवाजे तोड़ देता है जो कर्ज मांगने वाला होता है, इतना उसके घर पे बैठा रहता है आके और नरमी नहीं करते। तो इसका अगर वो समझ ले कि इतना सदका करने का अजर मिल रहा है, और ये समझ ले कि अगर मैंने सख्ती नहीं की और मैंने इसको माफ कर दिया या मैंने इसको मोहलत दे दी, जिस तरह से भी मतलब मोहलत दे दे, माफ कर दे, अगर देख रहा है कि ये बिल्कुल ही नहीं दे सकता, जितना दे सकता उतना ले ले, बाकी माफ कर दे, यानी किसी तरह से भी नरमी दिखाई है, तो अल्लाह ताला मेरे साथ नरमी करेगा। सुभान अल्लाह, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है करना, और कोई इससे कभी गुजरा हो तो उसको पता होगा कि कर्ज दे के फिर उसके बाद वो जाहिर ही बात है इंसान एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे मिल जाएगा, लेकिन जब नहीं मिल रहा होता तो वो उसके लिए बहुत ही एक तकलीफ दे भी बात होती है, और साथ उसके लिए एक जाहिर है हर एक अपने प्लान्स होते हैं कहीं इन्वेस्टमेंट के कुछ के, तो उसको उसको ये पता है कि ये मेरा पैसा है लेकिन वो कहीं फंस गया और वो उसके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, तो इसके ऊपर लोग गुस्से में आके कई ऐसी चीजें भी कर देते हैं जो कि सही नहीं। अच्छा जी, अगर कोई और कौन रह गया जिससे मैंने नहीं पूछा? कोई रह गया जिससे मैंने नहीं पूछा? राजिया कहाँ है और तहसीन कहाँ है आज? जी नसरीन, आप बताएंगी कि अगर कोई खरीदार जो है, जिसने किसी से खरीदा है कोई चीज, अब वो देने के लिए उसको पैसे नहीं है, उसने कर्जे पे लिया कोई चीज, अब देने के लिए पैसे नहीं है, मसलन कोई कोई भी चीज खरीद ली है, हम ज्यादातर यहाँ पे मसलन कोई घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, कुछ खरीदता है, खरीद लिए, अब कर्ज अदा करने के लिए पैसे नहीं रहे, मगर वो चीज वैसी की वैसी मौजूद है, तो क्या अब खरीदार के लिए, ये सॉरी जो जिसने दी है, बेची है, उसके लिए जायज है कि वो ये चीज वापस ले ले?
वालेकुम
अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
ये है कि अगर वो उस आदमी के पास मौजूद है तो वो वापस लेंगे, जैसे यहाँ भी बैंकों का रूल है ना कि घर ले लेते हैं गाड़ी वगैरह,
जी
जो अदा ना कर सके,
जी अदा ना कर सके तो वो वापस ले लें, ये
ये
असूल सही है, वो अलग बात है, बिल्कुल ये अलग बात है कि सही, वो अलग बात है कि बैंकों ने तो सूद के ऊपर ले लेके और बहुत कई गुना वापस कर,
हाँ
लेकिन लेकिन बिल्कुल, लेकिन यहाँ तक उनकी ये चीज सही है और जायज है कि ये वाला असूल सिर्फ अगर देखा जाए कि अगर कोई किसी को नहीं वापस दे सकता तो वो फिर चीज उसकी वापस वो ले ली जाए, और उसे यानी चाहे वो कोई भी चीज है, तो वो अगर ठीक कंडीशन में उतनी वैल्यू में है जितनी उसको दी थी तो वो उसी तरह उसका सामान वापस ले सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे कर्ज हुआ है, बहुत सारे लोगों का उसने कर्जा वापस देना है, तो ये चीज क्या सब में बांटी जाएगी या सिर्फ उस बंदे को दी जाएगी जिसकी ये चीज जिससे खरीदी थी? बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होगा कि बाकी चीजों को ठीक है इस तरह से तकसीम हो जाएंगी, लेकिन अगर मसलन एक चीज कोई है जो सिर्फ उससे खरीदी हुई है एक बंदे से, तो वो फिर ऐसा नहीं होगा कि बेच के और वो सब के अंदर तकसीम की जाए, वो फिर एज इट इज, ताकि एक का तो कर्जा उतरे बाकी सबका तो नहीं, ठीक है? तो ये यहाँ तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई रह गई? हमने
सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
कोई है आई भी नहीं है ज्यादा लोग, तो हम यहीं तक फिर करते हैं कि सबसे तो मैंने पूछ लिया, क्योंकि ये अहादीस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें खास तौर पे जो हम आज पढ़ेंगे काफी रेलिवेंट है हमारे वक्त में जहाँ पे हम रहते हैं इससे। जी मैंने उनसे भी पूछ लिया, और ये भी यहाँ पे हमने आगे देखा कि अगर किसी ने किसी से कर्जा लेना हो
तो,
और वो जो कर्जदार है वो कह दे कि जी मेरा फलां आपको आपका कर्जा वापस करेगा, तो उसको फिर कबूल कर लेनी चाहिए ये बात, और वो बंदा फिर उसको कर्जा दे दे वापस इसका, ठीक है? और ये भी नहीं करना चाहिए कि अगर कोई इंसान मसलन कभी कर्जदार भी बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं कि वो कर्जा ले लेते हैं कहीं से, फिर उनके पास होता भी है वापस करने के लिए, लेकिन बस नहीं करते, कहीं और खर्च करते जाएंगे और नहीं करते, तो वापस तो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जल्दी से जल्दी अपना कर्जा अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? सीरा इंशाल्लाह ताला हम मिक्सर पे ज्वाइन करते हैं क्लास को। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।